हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद, श्लोक नंबर 24। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि बता रहे हैं,
मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सैक निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सैक निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निभत्येयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निभत्येयम् विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् शब्दकार मति अर्थात बुद्धि मयि मुझ में अनुरक्त निबद्धा लगा हुआ इयम यह न कभी नहीं विपद्येत विलग कर्हिचित् किसी समय प्रजा जीव सर्ग सृष्टि के समय निरोध संहार के समय अपि च स्मृति स्मृति यानी स्मरण शक्ति च तथा मत मेरी अनुग्रहात कृपा से अनुवाद मेरी भक्ति में निरक्त बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होती यहाँ तक कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चूंकि भगवान शाश्वत है, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कार्य सब स्थाई होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है और जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर भगवान की सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी नष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने पर बढ़ती जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। भगवान अपने विषय में बता रहे हैं और जो भक्त भगवान की सेवा करता है उस सेवा का जो चिर स्थायित्व होता है उसके विषय में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इटर्नल हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान सनातन हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी वस्तु चाहे वो हमने उनका नाम जप किया हो, उनकी कोई सेवा की हो, भगवान की कोई कथा का श्रवण किया हो या कुछ भी, भगवान से रिलेटेड कोई भी कार्य कभी भी नाश उसका नहीं होता है। उसी के विषय में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, मतिर्मयी निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित्। जब बुद्धि भगवान में अनुरक्त हो जाती है, वास्तव में तो ये मति जो है, ये जो बुद्धि है ना, वो हमारे मन और हमारी इंद्रियों की सारथी है। जैसे हम समझ, हमने इस शरीर को एक रथ के विषय, रथ के जैसा समझा, और उसकी जो लगाम है वो उसका मन है, और लगाम पकड़ी किसने है? बुद्धि ने, वो सारथी है। बुद्धि जो है वो हमारे इस रथ को चला रही है। तो बुद्धि यदि परफेक्ट बन जाएगी, बुद्धि परफेक्ट कैसे होगी? भगवान जैसे बता रहे हैं, मतिर मई, मई मना भगवान कहते हैं, मति यदि मुझ में अनुरक्त हो जाएगी, फिर तो वो कभी भी न विपद्येत कर्हिचित, वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकती, कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता। उसका डिसीजन अगर मुझ में लगा हुआ है, मेरी प्रसन्नता के लिए बुद्धि यदि कार्य कर रही है, फिर वो कभी भी वियुक्त नहीं हो सकती। वो फिर कभी भी कोई भी कार्य करेगी तो, क्योंकि मुझ में लगी हुई है, तो कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, उस कार्य का नाश नहीं होगा। वास्तव में भक्तों, भगवान बताते, बुद्धि जो है वो, क्योंकि हमारी सारी कार्यकलापों का डिपेंड जो है वो बुद्धि पर करता है, क्योंकि डिसीजन लेती है बुद्धि। अब यदि डिसीजन सही है तो कार्य सही है, डिसीजन गलत है तो कार्य गलत है। और इस बुद्धि को सही करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये भगवान के अंदर लगी रहे? तो भगवान बताते भगवद गीता में कि क्योंकि ये बुद्धि से ही तुम्हें सारा कार्य करना है, तो उसको, बुद्धि को तुम खुद सही नहीं कर सकते। भगवान ने बताया है कि ये बुद्धि मैंने दी है आपको। भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, उसमें बुद्धि आया कि ये बुद्धि कहाँ से आई है? वो मेरी शक्ति है। अब जो जिसकी शक्ति होती है, वो वही शक्तिमान ही उस शक्ति का संचालन कर सकता है ना। जैसे मेरी अगर कोई शक्ति होगी, मेरा पावर होगा, तो मैं ही उसको, मुझे पता है ना उसको कैसे ऑपरेट करना। तो भगवान कहते हैं ये बुद्धि मेरी शक्ति या पराशक्ति है, तो इसको सही करने का तरीका 10.10 में बताते हैं। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां, सतत मतलब कंटिन्यूअस युक्त हो जाएगा यदि कोई जुड़ के, भजताम प्रीति प्रीति पूर्वकम, यदि वो कोई कंटिन्यूस जुड़ जाएगा मुझसे और प्रेम से मेरे नाम का भजन करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करेगा, मेरी कथाओं का श्रवण करेगा, मेरे पवित्र नाम का जप करेगा, तो ददामि बुद्धि योगम। अभी तो उसके पास कैसा है? खाली बुद्धि है। जब तक बुद्धि का यहाँ पर जो निबद्धि हम लिखा हुआ ना, युक्त होना, योग, ये भगवान के साथ अनुरक्त होना, उसको बोलते हैं बुद्धि भगवान के साथ योग करती है। तो भगवान कहते हैं अब ये बुद्धि का जो योग है वो आप अपने प्रयासों से कर सकते हो, लेकिन मेरी अनुकंपा, जैसे आखिर में कैसे लिखा है, मद अनुग्रहात, अगर तुम्हारे प्रयासों से यानी सततम कीर्तन तुम करते रहोगे, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और बुद्धि योग प्रदान करूंगा। तुम्हारी बुद्धि जब तक मुझसे अनुरक्त नहीं होगी, तब तक वो कोई भी डिसीजन लेगी तो वो क्या होगा? विपद्येत नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, क्षय हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। जो भी भौतिक कार्य करेगा तो वो इटर्नल उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। तो यदि उसके साथ, अब भगवान के साथ अनुरक्त नहीं है बुद्धि, तो कोई ना कोई मटेरियल वस्तु में अनुरक्त होगी। तो जब तक भौतिक वस्तुओं में अनुरक्त होगी, तो उसका किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी शाश्वत फल नहीं देगा। इस चीज को भगवान भगवत गीता में बहुत ही सुंदर बताते हैं, 2.40 में भगवान कहते हैं, नेहा अभिक्रमणा शुस्ते, अभी ऐसा कोई कार्य, अभिक्रमणा यानी कोई भी प्रयत्न जब हम करते हैं, नेहा इस योग में यानी भगवान के साथ बुद्धि को जब अनुरक्त कर देते हैं, फिर कोई भी अभिक्रमणा जो भी करते हैं, नाशो अस्ति प्रिय, नाश मतलब उसका कभी भी नहीं होता, उसकी कभी, उसके अंदर कार्य के अंदर कभी भी नाश नहीं होगा और ना ही प्रत्यवायो, प्रत्यवाय मतलब उसमें कभी नुकसान भी नहीं होगा, उसका कभी नाश भी नहीं होगा और कभी लॉस नहीं होगा। आप कैसी भी बाजी लगाते हो, भगवान की सेवा, यदि आपकी बुद्धि भगवान में अनुरक्त है और इच्छा ये है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति का लेश मात्र भी नहीं है, तो फिर उसमें ना ही कभी कोई हानि है और ना ही कोई ह्रास। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जन्मों तक उस कार्य को करोगे फिर ही कभी आपको फायदा प्राप्त होगा। भगवान आगे कहते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्प का मतलब होता है स्वअल्प, बहुत थोड़ा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, और स्वअल्प का मतलब जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी धर्मस्य। अगर थोड़ा सा भी धर्म का कार्य किया जाए, धर्म मतलब जो भगवान, धर्म का मतलब क्या है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। अब वो डायरेक्ट से आपको भगवान ने आज्ञा दी है या फिर अना जैसे शुद्ध सत्यगुरु जो होता है उनकी आज्ञा जो होती है उसके अनुसार कार्य करना धर्म है। तो त्रायते महतो भयात, तो बड़े से बड़े खौफनाक जो भय है उससे भी रक्षा हो जाती है हमारी। जैसे यहाँ पर संसार में भी हम कार्य करते हैं और हम सोचते हैं ना कि हमारी रक्षा हो, लेकिन यदि इस भौतिक जगत में हम किसी पर भरोसा करते भी हैं तो वो केवल इस भौतिक संसार के भय से ही हमारी रक्षा कर सकता है। मगर या जो भगवान के प्रति अनुरक्त होकर बुद्धि से जो कार्य करेंगे वो तो त्रायते महतो भयात, जो सबसे बड़ा महान भय होता है अर्थात मृत्यु का भय। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के समय एक जीव को इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है जैसे 42,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। किसी को डंक मारा कभी बिच्छू ने, या टीवी में या फिर कभी देखते हैं, जब एक बिच्छू डंक मारता है तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, चीखने लगता है, पागल हो जाता है। और वहां पर लिखा है हजारों बिच्छू एक साथ, ऐसे नहीं है एक बिच्छू आएगा वो डंक मारेगा और फिर दूसरा आना वो चला जाएगा, बोलेगा भले ठीक है, ये चिल्ला ले, कढ़ा ले, शोर कर ले ताकि अपनी पीड़ा को थोड़ा कम करे, फिर मैं जाता हूँ। ऐसे नहीं, एक साथ सैकड़ों हजारों बिच्छू जो है वो डंक मारते, कितना खौफनाक ये दृश्य होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर कितना अच्छा आश्वासन दे रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि आप मेरी भक्ति करते हो, बुद्धि को मुझ में लगाकर उसके बाद कार्य करते हो, अपने कंटिन्यूस अपने मुख से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हो, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हो, तो भले ही आप ये जीवन बहुत थोड़ा है, अपराध बहुत ज्यादा है, करोड़ करोड़ जन्मों से अपराध हो रहे हैं, अब ये जीवन कितना थोड़ा सा है और उसमें यदि हम थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, यानी एक जन्म में, खाली मनुष्य जन्म में आपने भक्ति की है और आपको त्रायते महतो भया, पिछले तमाम जितने भी जन्म हैं उनके अपराधों के बदले में जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलने वाली हैं नरक में, वो सब सजाएं आपकी माफ कर दी जाएंगी। कितना सरल, सुगम और सहज उपाय है बहुत बड़े भयानक भय से बचने के लिए। लेकिन जीव समझता नहीं है, इस संसार में आकर भगवान में अपनी बुद्धि लगाने की बदली में और भी भौतिक वस्तुओं में, भौतिक व्यक्तियों में बुद्धि को लगा देता है, जिसके कारण उसे पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं मैं तो खाली उसी की रक्षा, यहाँ पर भगवान ने कहा मतिर्मयी निबद्धेयम, यदि बुद्धि मुझ में लगेगी तब की मैं गारंटी देता हूँ न विपद्येत करहिचित, कि आपको फिर कभी भी आपके किए हुए कार्य का नाश नहीं होगा। पता है भक्तों भगवान की भक्ति कैसे है, जैसे बुद्धि भगवान में लगाकर जब हम कोई कार्य करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक सेविंग बॉक्स के अंदर रोजाना एक 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 कॉइन डालते जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिक्की बैंक। इसके अंदर रोजाना कॉइन 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 डालते हैं, फिर एक दिन आता है जब वो पूरा फुल भर जाता है और फिर वो कहता है अब तो इसके अंदर जा नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर तक भर गया है, अब इसको खोलना पड़ेगा, इसमें से धन निकालना पड़ेगा। और जब निकालते हैं तो पता चलता है कि क्योंकि इतने बहुत समय तक इसके अंदर डाला है तो बहुत सारे इतने सारे पैसे निकलते हैं कि वो कुछ उसमें से अच्छा खरीद सकता है। उसी तरह हमारी भी भक्ति, रोज 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 हम 16 माला जप करके उसमें जमा करते जाते हैं, फिर जमा करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि वो भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी। इसके विषय में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती रहती है, और जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। ये जो हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, सुबह की साधना करते हैं, भागवतम को श्रवण करते हैं, भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, श्लोक को पढ़ने का अभ्यास करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि जितना हम सिंसियरली ये करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाएगा, उसकी साधना जब परिपक्व हो जाएगी तो वो अपनी सारी सेवा के आधार पर जितना आपने सेवा, बाकी संसार में जितने भी आप कार्य करते हो, बुद्धि भौतिक वस्तुओं में लगाकर जो भी भौतिक वस्तु आप प्राप्त करते हो, वो कभी इटर्नल शांति, इटर्नल सुख या भगवान के पास जाने का आपका आधार नहीं बनेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भगवान के पास आप किसके आधार पे जाओगे, जो आपने भगवान की सेवा की है, जो भगवान के पवित्र नाम का जप किया है, जो भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, वही कार्य के द्वारा आप भगवान को प्राप्त करोगे। और उसमें भी कितना आप उसको सिंसियरली कर रहे हो, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कितना हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, वो सब भी चेक होगा। जितना जो उस कॉइन, उस जो पिक्की बैंक है ना, वो उसके अंदर केवल प्योर चीज जा सकती है, प्योर गोल्ड का, जो जिसके अंदर रंच मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं होती ना, वही कॉइन अंदर जा सकता है। बाकी तो एक नीचे से होल बना हुआ है, जो नकली कॉइन होगा ना, वो उधर से नीचे निकल जाएगा, उससे फिर फेल नहीं होगा। इसलिए जो प्योर डिवोशन है ना, वो ही उसके अंदर डालनी है हमें, केवल और केवल भगवत प्राप्ति के। तो फिर हम ऐसे सोचें कि हमारे अंदर तो इतनी शुद्धता नहीं है, फिर हमारा तो पिक्की बैंक खाली पड़ा रहेगा, पता नहीं कभी नहीं। शुद्धता कैसे आएगी फिर? शुद्धता भी तो ऐसे ही आएगी, ये भगवान का पवित्र नाम, ये भगवान की कथाएं जब हम सुनते जाएंगे तो हमारा हृदय, जो कि अभी लोहे की कॉइन, जिस तरह से अभी हम उसमें सारे खोटे सिक्के हैं, वो सारे सिक्के जो हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे और भगवान का पवित्र नाम जप करते जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे सिक्के सोने के बनते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारा ये सेविंग बॉक्स पूरा फुल भर जाएगा और भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। और यहाँ तक भगवान आगे कहते हैं, और भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं आगे। भगवान कहते हैं प्रजा सर्ग निरोधे भी, सर्ग कहते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और निरोध यानी जब सृष्टि का संहार होता है। भगवान कहते हैं जब जीवों का सृष्टि में उत्पन्न होता है और जब विनाश होता है, स्मृतिश्च मदनुग्रहात्, तुम्हें फिर भी स्मृतिश्च यानी तुम्हारी स्मरण शक्ति ऐसी ही बनी रहेगी, मद अनुग्रहात् मतलब मेरी कृपा से। यहाँ भगवान अत्यंत ही सुंदर आश्वासन दे रहे हैं कि जब आप भगवान की भक्ति करते हो, अपने बुद्धि को भगवान में लगाकर कोई भी सेवा करते हो, तो फिर चाहे सृष्टि का उत्पत्ति होती है या प्रलय होता है, कुछ भी हो जाता है, समय कितना बीत जाता है, तब तक संहार के समय भी भगवान की कृपा ऐसी होती है कि हमारी भगवान के साथ जो बुद्धि लगी हुई थी ना, वो हमारी कभी भी स्मरण शक्ति खत्म नहीं होती है। यानी वो याद हमें रहता हमेशा कि भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम जो हम, वो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ लोग तो ऐसा होते हैं भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें ना स्मरण शक्ति भूल जाती है, वो याद नहीं रहती भक्ति वगैरह, वापस से भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। तो भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भगवान कृपा करते हैं उन पर, उनकी स्मरण शक्ति जो है वो अंत तक बनी रहती है। तो उसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा संभव है कि भौतिक जगत में कोई भगवान की भक्ति करता है और फिर किसी न ऐसे भौतिक आकर्षण या माया के कारण या कोई भी भौतिक वस्तु के कारण, कभी ऐसा होता है कि उसका अटैचमेंट भौतिक वस्तु की ओर चला जाता है। जैसे हम अगर उदाहरण दे सकते हैं महाराजा भरत का, महाराजा भरत ने भगवान की भक्ति करने के लिए अपने संपूर्ण राज्य को छोड़ दिया है ना, सब कुछ छोड़कर आ गए भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में तपस्या करने के, और वहां पर आकर उनकी मति भ्रमित हो गई और किसमें लग गई, एक हिरण के बच्चे में। मतलब कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात, अपनी पत्नी अपने संतान सब कुछ छोड़कर, किसी के अंदर आसक्ति नहीं रखी, सब कुछ छोड़कर भगवान की प्रशंसा भगवान की भक्ति के लिए संसार को छोड़कर जंगल में आ गए। लेकिन जंगल में भी वह भौतिक आसक्ति उसको आके जकड़ लिया, यानी ऐसा हुआ ना कि वो हिरण के अंदर उसका मुख, कितना मतलब ये दुर्भाग्य है कि भगवान की भक्ति के लिए आप आए हो, भले कितना ही वो उनको अगर कोई ऐसे अच्छे तरीके से बताना चाहे तो भाई वो कितना अच्छा बंदा था कि अगर वो हिरण मर जाती ना, वरना अगर उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता, माँ तो उसकी उस टाइम पर ही मर गई थी, उसका कोई तो ख्याल रखने वाला हो। लेकिन चलो ठीक है, उसने ख्याल भी रखा, लेकिन इतनी आसक्ति कि मृत्यु के समय वो भगवान भूल गया और वो हिरण को याद रखा, तो ये कितनी दुर्गति। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फिर भगवान, उन्होंने क्यों नहीं याद किया भगवान को, जब भगवान कहते हैं स्मृति बनी रहती है चाहे सृष्टि का संहार होता है या सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है तो भी स्मृति बनी रहती है, वहां पर तो उसकी स्मृति जो है वो नष्ट होगी नहीं। जीव कब तक सिंसियर है, जीव जब चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, प्राप्ति तभी होगी। आप जब तक हमारी इच्छा तीव्र नहीं होगी तब तक प्राप्ति संभव नहीं है, ये याद रखो। इसलिए भगवान ने हमें पहले पहले वाले श्लोक में बताया था, सकृत्यत्तशितं रूपं एतत्कामायते नग मत्काम शनकै साधु सर्वान् विमुञ्चति सर्वान् मुञ्चति ऋच्छय। कि जितनी भौतिक इच्छाएं हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो भौतिक इच्छाएं सोचेंगे हाँ ठीक है ये तो भक्ति कर रहा है ऐसा करते हैं अब उनके पास नहीं जाते, नहीं वो आती रहेंगी। लेकिन जब भगवान के प्रति हमारी इच्छा तीव्र होती जाएगी, भगवान के प्रति हमारा हृदय बहुत उत्कंठा बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान ने क्या कहा, सकृत दर्शितम रूपम एतत कामायते, तुम्हारी कामना को तुम्हारी लालसा को बढ़ाने के लिए। तो भक्तों हमें भी सदैव ऐसे संग में रहना है कि हमारी भक्ति की जो लालसा है ना हृदय के अंदर जो कामना है वो बढ़ती रहे। लेकिन जैसे ही देखो महाराजा भरत ने जैसे संग त्यागा, अब वहां पर उसको बूस्ट नहीं मिल रहा था है ना, कथा नहीं मिल रही थी भगवान की, जब श्रवण नहीं हो रहा है तो उत्कंठा कम हो जाती है, फिर याद नहीं आता है कि मुझे भौतिक वस्तुओं से विरक्ति रखनी है। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा भगवान है कि मत कामना शनक है साधु, अगर मेरी कामना बढ़ती जाती जिस जिस उससे टेम्परेचर के साथ वो बढ़ेगी ना कामना, उसी डिग्री में भौतिक इच्छाएं जो है वो नीचे होती जाएंगी। तो फिर ऐसा वातावरण, ऐसा सर्कमटेंसेस, ऐसा संघ हमें ढूंढना है कि हमारी भक्ति जो है वो धीरे 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 उन्नति करती जाए। भक्ति उन्नति नहीं करेगी, अगर भक्ति फ्रीज हो जाएगी, श्रवण नहीं करेंगे ना, साधु संग नहीं करेंगे, तो भक्ति उन्नत नहीं करेगी। फिर आप अकेले में क्या करोगे, फ्रीज हो जाएगी। जितनी आप, हाँ भाई मैं भी तो माला करता हूँ, मैं डेली 16 माला करता हूँ, और जरूरी थोड़ी है सत्संग, वहां पर सत्संग में जाता हूँ तो भी यही बताते हैं कि आपको 16 माला जप करना है, आपको है ना भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाना है। मैं वही कर रहा हूँ, तो फिर है ना मुझे, अब कर तो रहा हूँ ना, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर क्या होगा, भक्ति बढ़ेगी नहीं, साधु संग के बगैर भक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए कहा जाता है श्रवण, पहले श्रवण आपको कंटिन्यूस करते रहना, करते रहना। जब हम श्रवण करते रहते हैं तो भक्ति में उन्नति होती है, और जब भक्ति में उन्नति होती है तो क्या होता है, भगवान ने बताया सर्वान मुंचति हृच्छयान, के भौतिक जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। अभी लेकिन ऐसा तो है, लेकिन अगर आपने भक्ति की है और फिर समय ऐसा आया कि आपने फिर श्रवण नहीं किया, साधु संग नहीं किया, फिर वापस से भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण आपका हो गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने क्या कहा है कि प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रह, कि अगर सृष्टि की उत्पत्ति होती है या संहार होता है, मेरी कृपा से उसकी स्मृति बनी रहती है। अब देखो महाराज भरत को हिरण का जन्म मिल गया, ठीक है, हिरण का जन्म मिला है जानवर का, लेकिन उस हिरण जानवर के जन्म में भी उसे याद है कि अब मुझे भौतिक आसक्ति नहीं करनी है। जैसे कहते ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, या जिस जब भी है ना ऐसा था कि महाराज भरत जब हिरण की योनि में आए थे ना, तब वो किसी भी भौतिक वस्तु की ओर आकर्षित होते ही नहीं थे, यहाँ तक कि घास नहीं खाते थे और बिल्कुल अपनी माता और ये किसी की ओर भी आकर्षित नहीं होते थे। कुछ ही दिनों में हिरण का जन्म उन्हें मिला, लेकिन कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि किसी भी वस्तु में उनका आकर्षण नहीं था। हिरण हालांकि पशु योनि में भी किसी वस्तु में उसने आकर्षण नहीं रखा। उसके बाद जड़ भरत का उन्हें जन्म मिला, और जड़ भरत में के जन्म में तो उन्होंने उनको वह स्मृति याद थी, महाराज भरत जब थे उसके बाद हिरण बने वो भी याद था कि भाई उस जन्म में मैंने हिरण की और आसक्ति जमाई थी, उसके बाद मुझे हिरण बनाया, और उसके बाद आज मैं जड़ भरत बनाऊ, तो भी वो वाली स्मृति याद थी। किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं, खाने को मिल जाता था तो खा लेता था, नहीं खाने को मिलता था तो नहीं खाता था, कुछ भी नहीं, किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं कि मुझे केवल और केवल भगवान के साथ अपनी बुद्धि जमा के भगवान को स्मरण करना। तो ये देखो कितना, यहाँ तक कि जब हम चाहते हैं कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो जो हमने साधना की है वो सब आके हमारा आधार बन जाती है। कैसे होता है, जैसे हम लोग को याद है महाराज इंद्रद्युम्न, वो राजा थे, वो जब राजा थे तब उन्होंने भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना के श्लोक याद किए थे। उसके बाद क्या हुआ, बाद में उनको हाथी की योनि मिल गई, ठीक है, अब वो गजेंद्र बन गए। अब गजेंद्र बन गए, जब तक वो सुखी थे, जब तक वो अपने आप चाहते नहीं थे, तब तक वो मस्त थे अपने भौतिक लाइफ में। लेकिन जब उन्होंने, जब ना मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा और वो दुख से कर्रा उठे, तब उन्हें पुनः वो सारी स्तुति याद आ गई, भगवान को स्मरण करने लगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, और भगवान को वो सारी स्तुति गा के सुनाई, है ना। ये वरना हैरत की बात है कि पूरा जन्म गुजर गया और हाथी का जन्म उसे मिला, लेकिन फिर उस हाथी की योनि में भी उसने भगवान को वो सारी गजेंद्र की प्रार्थनाएं, कभी ऐसा अवसर आएगा हम पढ़ेंगे, इतनी सुंदर प्रार्थना है वो, और हम सब याद करेंगे, वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं कृपा करता हूँ और स्मृति बनी रहती है उसकी। तो भक्तों आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जब भी ऐसा समय आएगा ना जब हमें इसकी बहुत आवश्यकता होगी, तो वो सारी जो भक्ति है हमारी वो हमारा आधार बन जाएगी। इसलिए श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर, जो पूरे जन्म में पूरे जीवन में उसने सेवा की है, वही सेवा के आधार पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। आज हम जो ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, अपने समय में से भगवान के पवित्र इन कथाओं का, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, वो साक्षात भगवान का सानिध्य है। भगवान के सानिध्य को हमें आज हमें जो प्राप्त हो रहा है और उसके लिए हम इतना लालायित है, उन कथाओं को पढ़ रहे हैं, ये सब हमारा आधार बनेगी भगवान की वास्तविक प्राप्ति के लिए। और भगवान की श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसी संचित सेवा का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान ने भी कहा है, मतिर्मयी निबध्येयम् न विपद्येत करेचित, कभी भी नाश नहीं होता है, यह हमेशा शाश्वत होता है। जो भक्ति होती है, क्योंकि भगवान शाश्वत है, तो भगवान के लिए किया हुआ सारा कार्य भी शाश्वत है। और जब बुद्धि भगवान के अंदर फिक्स हो जाती है, फिर वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है और फिर वो भक्ति बढ़ती जाती है। आगे आगे नारद मुनि बताते हैं, श्लोक नंबर 25, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, एतावदुक्त्वो परराम तन्महत् भूतं न भूलिंगमालिंग मीश्वरम् अहम् च तस्मै महतां महीयसे श्रीश्रावणामं विदधेनुकंपिता एता वदुक्त्वो परराम तन्महत् भूतं न भूलिंगमालिंगमीश्वरम् अहम् च तस्मै महतां महीयसे श्रीश्रावणामं विदधेनुकंपिता एतावदुक्त्वो परराम तन्महत् भूतं न भूलिंगमालिंगमीश्वरम् अहम् च तस्मै महतां महीयसे श्रीश्रावणामं विदधेनुकंपिता एतावदुक्त्वो परराम तन्महत् भूतं न भूलिंगमालिंगमीश्वरम् अहम् च तस्मै महतां महीयसे श्रीश्रावणामं विदधेनुकंपिता। शब्दों का अर्थ, एता एतावत् यानी इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, उपराम उपर राम यानी रुक गया। जैसे अभी भगवान बात कर रहे थे ना उनसे, तो अभी नारद मुनि बोलते हैं, एतावदुक्त्वम उपरारम, कि अभी इतना बोल दिया मुझे। क्या बोला उन्होंने, भगवान ने उनको क्या बोला था? पहले तो बोला, हन्तास्मिन् जन्मनि भगवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्क कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां, कि अब इस जन्म में आप मुझे वापस से नहीं देख सकते हो। अविपक्व कुशायाणा, आप जिनकी सेवा परिपक्व नहीं होती है और जो समस्त भौतिक कल्मशों से निवृत्त नहीं होते हैं, दुर्दशो हम, मुझे देखना बहुत ज्यादा कुयोगी नाम, जो योगी संपूर्ण योगी नहीं है, उनके लिए मेरे को देखना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान ने आगे बताया कि जो मैंने तुम्हें अभी स्वरूप दिखाया था, उसका कारण है, सकृद्य दर्शितम रूपम एतत् कामायते नग मत्कामाशन कर साधु सर्वान मुंचति विरिच्छया, कि मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए दिया था ताकि तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाऊं, बहुत तुम्हारी अंदर मुझे प्राप्ति की बहुत ज्यादा लालसा हो जाए, क्योंकि तुम जितना मत कामाशन कह साधु जितना ही अधिक मेरे लिए लालायत होगे तो क्या होगा, सर्वान मुंचति रिच्छया, जो भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और कल हमने पढ़ा श्लोक नंबर 23 में, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मई दृढ़ामति, कि अगर कुछ समय के लिए भी अधीर्घया थोड़ी देर के लिए भी यदि कोई सत्य की सेवा करता है तो मतलब वो भक्ति करता है तो उसकी मति जाता मई दृढ़ाविता, उसकी मति जो है वो मुझ में स्थित हो जाती है, मुझ में स्थिर हो जाती है, और उसका क्या फल होता है, अत्वावद्यमिमं लोकं गंता मज्जन तामसी, कि उसके फलस्वरूप वो शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बन जाता है। भगवान के अंदर जब बुद्धि फिक्स हो जाती है तो क्या होता है, भौतिक जगत क्योंकि उस समय वो छोड़ेगा, जिस समय त्यागेगा, भगवान ने बताया भगवद गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायति कौन्ते या सदा तद भाव भाविता। 1.5 में भगवान ने कहा मरते समय आप जिस जिस वस्तु के विषय में सोचोगे तो आपकी दूसरा जन्म वहीं पर आपको प्राप्त होगा। तो बुद्धि यदि क्या हो गई यहाँ पर, मई दृढ़ामति भगवान के अंदर फिक्स हो गई है, तो फिर क्या बनना है, भगवान क्या बता रहे हैं कि फिर आप क्या बनोगे, गंता मज्जन तामसी, वो मेरा जन बनेगा, मेरा पार्षद बनेगा। और जब मति भगवान के अंदर फिक्स हो जाती तो भगवान ने कहा मतिर्मयी निबद्धेयम न विपद्ये टकृषि, तुम ये ना सोचो कि मेरे अंदर बुद्धि फिक्स हो गई है तो कभी उसका भी क्षय नहीं, क्षय हो जाएगा या समाप्त हो जाएगी वो सारी मेरी सेवा, कभी मरने के बाद खत्म हो जाएगी, जिस तरह भौतिक वस्तुओं की सेवाएं या भौतिक वस्तुओं की जो प्राप्ति है वो समाप्त यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं प्रजा सर्ग निरोधोपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्, कि अगर सृष्टि का संहार भी होगा ना उस समय भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। और भगवान आगे नारद मुनि बता रहे हैं एतावदुक्त, इतना बोलने के बाद उपराणाम यानी उसके बाद रुक गए, बस अब इतना बोलने के बाद रुक गए, तन महत का मतलब होता है भूतम मतलब आश्चर्यजनक, नभलिंगम अर्थात शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम नेत्रों से ना देखने वाला अदृश्य, ईश्वरम परम पुरुष को अहम में च भी तस्मय उसका महतात महान महीयसे अर्थात महिमा मंडित, शीर्षा अर्थात शिर से अवना मम अर्थात नमस्कार वेद्यते किया अनुकंपित उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर, यानी कि जब इतना भगवान ने कहा तो भूतम नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम, यानी कि ऐसे भगवान जो कितने आश्चर्यजनक थे, नभोलिंगम मतलब मुझे सुनाई दे रहे थे परंतु अलिंगम ईश्वरम, ये ऐसे भगवान ऐसे परम पुरुष जो कि दिख नहीं रहे थे, खाली मुझे उनका शब्द सुनाई दे रहा था, नभोलिंगम मतलब सिर्फ शब्द के द्वारा व्यक्त थे और अलिंगम मतलब उनका कोई दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था, सिर्फ सुनाई दे रहा था ईश्वरम, अहम च तस्मय महतात्मा ही ऐसे। और भगवान की इतनी बड़ी अनुकंपा को मैंने बहुत कृतज्ञता अपनी दिखाई, भगवान को बहुत कृतज्ञता प्रकट किया और क्या किया, शीर्षवानम विद्ध धेनु कंपितम, कि अपना सिर झुकाया, शीर्षणा मतलब सिर झुकाया, अवनामम मतलब नमस्कार किया, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा की थी। वास्तव में भगवान के शब्द सुनना या भगवान का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं थी, ये नारद जी के ऊपर भगवान की बड़ी अनुकंपा थी कि भगवान ने उन्हें पहले अपने दर्शन दिखाए और उसके बाद अपने शब्द उनको सुनाए, कृतार्थ कर दिया उनका जीवन। और नारद बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को मान रहे थे, और ये सारी कृतज्ञता उन्हें उन साधुओं के संग से प्राप्त हुई थी, क्योंकि जब वो साधु आए थे और उनसे जो शिक्षा उन्होंने ली थी, इतनी उस शिक्षा के ऊपर उनको इतनी श्रद्धा थी कि जब उनकी माता का देहांत हो गया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब उन्हें क्या लग रहा था, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ वह सब वचन हैं जो साधुओं ने मुझे कहे थे। अब उन वचनों के साथ मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना है, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। और उन्हीं वचनों के ऊपर इतनी श्रद्धा थी उनको, इतना विश्वास था कि जब उनके आदेशानुसार वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, तपस्या करने लगे, तो एक दिन ऐसा आया कि भगवान के दर्शन हो गए उन्हें। वास्तव में भक्तों, भगवान के दर्शन करने का यहाँ पर नारद मुनि ने हमें तरीका बताया, एक मेथड बताया है कि यदि हम शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे, उनके साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो फिर यही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। अब हम कितना सीरियस होके पढ़ रहे हैं, कितना सीरियस होके सुन रहे हैं, कितना सीरियस होके जप कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। तरीका यही है, और तरीका हम कितना संजीदगी के साथ कर रहे हैं, कितना श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, कितना विश्वास के साथ, कितना उत्साह के साथ कर रहे हैं, परिणाम उतना ही हमें जल्दी या देर से मिलेगा। अनुवाद देखिए, नारद मुनि कहते हैं, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस परम आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए हैं, वे वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखे और अनुभव किए जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, और इनमें तथा इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बात बता रहे हैं कि भगवान यदि सुनाई दे रहे हैं परंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया, भूतम न भोलिंगम अलिंगम ईश्वरम, कि सुनाई दे रहे थे परंतु दिखाई नहीं दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते, इसमें कोई अंतर थोड़े है। भगवान के शब्द, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के साक्षात दर्शन, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो सब इक्वल है। यदि हमें भगवान सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भी एक ही बात है, वो भी भगवान का सानिध्य ही है। जितने भी वेद हैं, वो भगवान की श्वासों से उत्पन्न हुए हैं, और जब कोई वेदों का अध्ययन करता है, वेदों का उच्चारण करता है, तो उन्हीं वेदों के द्वारा ही भगवान को अनुभव किया जा सकता है। इस संसार में भी जब ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, वो साक्षात भगवान के दिव्य शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान के शब्द जैसे नारद मुनि को सुनाई दिए, उस तरह से मुझे नहीं सुनाई दिए। ये भगवान के ही तो शब्द हैं। अब देखो, जब हम गुरु महाराज के द्वारा भगवान के शब्द को सुन रहे हैं, क्या भगवान ने क्या कहा, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ? और गुरु क्या कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण में आ जाओ। तो शब्द तो वही बता रहे हैं ना। भगवान कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, तो ये शब्द कौन बोल रहा है, भगवान ही बोल रहे हैं, हमें सुनाई दे रहा है ना, तो वो माध्यम बना दिया। क्योंकि डायरेक्ट से हमारी, हमने अभी इतनी तपस्या की नहीं नारद मुनि जैसी, तो हमारे अंदर इतना पावर आया नहीं है कि हम भगवान के शब्दों को श्रवण कर सकें। लेकिन हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा है कि शुद्ध गुरु के द्वारा हमें ये सब शब्द सुनाई देते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। अगर तुम मेरे जन्मों को और कर्मों को तत्व से जानोगे तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनायति, जब ये देह त्याग कर लोगे तो दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मामेति सर्वजन, तुम्हें मेरे धाम में आना, मतलब तुम्हारा मेरे धाम में तुम आ जाओगे, अगर मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को, मेरे जन्म और कर्म के जितने भी प्रसंग हैं उनको तुम सत्य मानोगे, उनको तुम दिव्य मानोगे, तो तुम्हें इस भौतिक बंधन के चक्कर से तुम छूट जाओगे। तो ये सब शब्द किसके हैं, भगवान के ही हैं ना। तो हमारा कितना सौभाग्य है, हम जब भी भगवत गीता पढ़े ना तो हमें भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, कृतज्ञता। देखो नारद मुनि को जब भगवान के शब्द सुनाई दिए हैं तो वो कितनी कृतज्ञ महसूस करता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के शब्द सुनाई दे रहे हैं, मेरी भगवान के ऊपर कितनी कृपा, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो हम भी जब भगवद गीता को श्रवण करते हैं हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि देखो भगवान ने मुझे आज कितनी अच्छी बात बताई, कि भगवान के शब्द हैं वो भगवान से अभिन्न हैं, चाहे 5,000 साल हो या चाहे 5 करोड़ साल हो, भगवान के शब्द इटरनल हैं, भगवान की तरह शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि समय के बाद भगवान के शब्दों का असर समाप्त हो जाता है, कि वो पहले अर्जुन को 5,000 साल पहले कहे थे, अब तो लिखे हुए रह गए। लिखे हुए नहीं, भगवान का एक एक, भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अब तक शाश्वत है, अब वो रहती दुनिया तक, कभी भी ये इनकी शाश्वतता, इनकी वास्तविकता कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ये कोरे शब्द कभी नहीं बनेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कृष्ण को उतना ही महसूस करेंगे जितना कि हमारे अंदर निष्ठा है ना। आम साधारण व्यक्ति के लिए जो भगवान का भक्त नहीं, वो भगवद गीता भी एक साधारण मैगजीन की तरह उसको पढ़ता है, लेकिन एक भक्त के लिए ये भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। जैसे हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त, जब वो जा रहे थे गंगा के किनारे पर, तो एक भक्त ना भगवद गीता को देख रहा था और रो ही जा रहा है, उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, पढ़ना एक शब्द भी संस्कृत का नहीं आ रहा था, लेकिन वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आपको इतना रोना आ रहा है, भगवद गीता में इतना प्रेम आ रहा है, आपने कौन सा प्रसंग पढ़ा जिसमें, क्योंकि भगवद गीता में स्टोरी तो है ही नहीं, तो फिर ना आपको क्या क्या बात से इतना दुख हो रहा है। तो फिर उसने बोला, मैंने तो पढ़ा नहीं है, देखा चैतन्य महाप्रभु ने किताब भी उल्टी पकड़ी हुई थी, लफ्ज सारे उल्टे थे, लेकिन फिर भी वो इतना प्रेम भगवत गीता के अंदर उसको हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अभी आप क्या अनुभव कर रहे हो? तो बोला, मैं कृष्ण को अनुभव कर रहा हूँ, कि इसमें जो भी बोल रहा है वो कृष्ण बोल रहा है, और कृष्ण कैसे अपने भक्त के ऊपर कितनी करुणा कर रहा है, एक भक्त है उसका, और कृष्ण उसका सारथी बनने, उसके पीछे जो फोटो बना हुआ था ना उसको दिखा कर चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हैं कि देखो ये कृष्ण कितनी कृपा है, उसकी त्रिलोकी का नाथ है, लेकिन एक भक्त की रक्षा के लिए वो एक सारथी, एक ड्राइवर। कोई हम जैसे साधारण व्यक्ति होंगे वो भी अगर थोड़े से अमीर हो जाते हैं, कुछ किसी का ड्राइवर बनने के लिए वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। भगवान है त्रिलोकी के नाते हैं, लेकिन वो ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए। तो फिर वो भक्त बोल रहा था कि ये भगवान कितने करुणामय है, भगवान की करुणा को महसूस करके मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक एक शब्द भगवान के प्रेम से, भगवान की करुणा से भरा हुआ है। तो जब भी हम भगवद गीता पढ़ें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि भगवान हमसे कह रहे हैं, ऐसा जैसा आस्वादन नारद मुनि को हो रहा है, ऐसा आस्वादन हमें भी खुद से होना चाहिए। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आज भी आप भगवान को देखना चाहते हो, भगवान को श्रवण करना चाहते हो, तो भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के रूप में, भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अभी भी व्यक्त हैं। अगर आप जितना उस पर श्रद्धा रखोगे उतना ही आप भगवान को अनुभव कर सकते हो, उतना ही आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूँ। देखिए।